अध्याय 16 विद्यापति के गीत। गीति काव्य के उपयुक्त विवेचन और उससे उपलब्ध तत्वों की दृष्टि में रखकर विद्यापति के गीतों का विश्लेषण करने पर उसकी बहुत सी विशेषताओं और त्रुटियों का पता चलता है। विद्यापति के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है संगीतात्मकता। संगीत गीतों में दो प्रकार से संलग्न हो सकता है। एक तो यह है कि वे गीत विभिन्न वाद्यों के साथ किसी प्रणाली में गाए जा सकते हों। दूसरा यह कि संगीत की मूलभूत विशेषता यानी लय और उसकी आत्मा की गीतों में अवस्थिति स्पष्टतः यूँ कहा जा सकता है कि बहुत से शास्त्रीय गीत संगीत में गाए जाकर या कवि द्वारा निश्चित राग रागनी में आबद्ध होकर संगीत का विषय बनते हैं, किंतु बहुत से गीत ऐसे हैं जिन्हें असंगीतज्ञ मनुष्य भी अपने मन में दोहराकर उनकी लयमयता से उनके भीतर निहित संगीतात्मक तत्व से आनंद प्राप्त करता है। विद्यापति स्वयं एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, मैं गायक नहीं कहता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। वैसे अपने बहुत से पदों के अंत में वे सर्वत्र विद्यापति कवि गाओल ही लिखते हैं। गीत की जानकारी का पता दो प्रकार से चलता है। एक तो कवि ने अपने गीतों के लिए राग रागिनियों का निर्णय कर दिया है। डॉक्टर सुभग झा द्वारा संपादित विद्यापति गीत संग्रह में जितने भी पद दिए हुए हैं वे सभी रागबद्ध हैं। इस संग्रह के आरंभिक 56 गीत मालव राग में, 57 से 130 तक के गीत धनक्षरी राग में, 131 से 135 तक आसावरी राग में, 136 से 146 तक मालारी राग में, 14वां सामरी राग में, 148 से 154 तक अहिरानी राग में, 155 से 157 तक केदार राग में, 158 से 162 तक कानाड़ा राग में, 163 से 194 तक कोलर राग में, 196 से 202 तक सारंगी राग में, 203 से 207 तक गुजरी राग में तथा आगे के कई पद बसंत विभास नाट राग ललित वरली आदि रागों में दिए हुए हैं। ये राग कवि द्वारा निर्धारित हो सकते हैं, किसी दूसरे संगीतज्ञ द्वारा भी ये रागबद्ध किए गए ऐसा भी हो सकता है। वैसे विद्यापति के कुछ गीतों में शब्दों के साथ कई कई लेखक ने वाद्य स्वरों को भी दे दिया है, जैसे ये गीत गाए जाने के लिए ही लिखे गए थे, यथा बाजत दृग दृग द्रिम द्रिमिया नटति कलावती मत श्याम संग कर करताल प्रबंधक ध्वनिया डम 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 डिमिट डिमिट मादल रुन झुन मंजीर बोल किंकि निरन रनि बलवा कनकनि निधुवन रास तमुल उतरोल बीन रवाव मुरज स्वर मंडल सारे गम पद धिनी सा बहुनिधि भाव घटिता घटिता ध्वनि मृदंग गरे जानि चंचल स्वर मंडल करुर राव श्रम भर गलित लुलित कबरी युत मालति माल विथारल मोती समय वसंत रास रस वर्णन विद्यापतिमति क्षोभित होती। ऐसे पदों को देखने से विद्यापति न केवल संगीत प्रेमी बल्कि संगीतज्ञ प्रतीत होते हैं। संगीतज्ञ कवियों बैजू बावरा और गोपाल नायक का जिक्र हमने भक्तिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के पर्यवेक्षण के सिलसिले में पीछे किया है। इन कवियों की कविताओं में भी शब्दों के बीच में ताल और स्वर के संकेत दिए हुए हैं। बैजू गोपाल आदि न केवल संगीतज्ञ थे बल्कि उच्च कोटि के भक्तिपूर्ण पदों के रचयिता भी। मध्यकालीन कवि के लिए संगीतज्ञ होना तब आवश्यक भी था, इसलिए भक्तिकाल के हिंदी कवियों ने भी अपनी कविताओं के राग इत्यादि निश्चित कर दिए हैं। लेकिन बहुत से गीत ऐसे हैं जो संगीत के तत्वों से स्पष्टतया बाधित न होकर अपनी आत्मा की संगीतात्मकता के कारण हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे गीत मन में निहित वक्तव्य भाव के अनुकूल ही लय का निश्चित रूप लेकर अवतरित हुए हैं। इन गीतों में जैसे मानव मन में परंपरा संस्कार और सुख दुख के हजारों क्षणों में प्राप्त अनुभूतियों को लहर की कंपन है, ये गीत मानव मन में अभिलाषित भाव के साथ इतना तादाद में स्थापित कर लेते हैं कि जैसे ये हमारे मन की उपज हो। इसी कारण इस प्रकार के गीत संगीत की वाय परपाटी से अनुचालित न होकर मनुष्य के मन में अवस्थित शाश्वत संगीत से प्रेरित होते हैं। इन पदों में शब्द और अर्थ की गुरुता नहीं होती, इनके शब्द अत्यंत सहज और बहुप्रचलित शब्द सांकेतिक ढंग से भाव की अभिव्यक्ति कर देते हैं। ऐसे शब्द जो सैकड़ों वर्षों से जनमानस में उसी अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं, इसी कारण ऐसे पदों के भाव की अभिव्यक्ति शब्द से नए लय की आत्मा के आधार पर होती है। जैसे कुंज भवन से निकसल रे रोकल गिरधारी, कहीं नगर वस माधव रे जान कर बाट मारी, चाण कन्हैया मोर आचर रे फाटत नव सारी, अपजस होइत जग भुरी रे जन करिय उधारी, संग कर सखी अगुआइल रे हम एक सारी नरे नारी, दामिनी आय तुलाइल रे एक रति अंधियारी। शब्द निर्वाच्य सहज है, अलंकरण का कहीं नाम नहीं। पूरी पद में एक खास प्रकार का उल्लास भरा आग्रह, लय की बार बार टूटती उठती मनुहार और इन सब के ऊपर जैसे सहज शब्दों का प्रयोग जो इस गीत को प्राणवान बनाते हैं। एक बात और ध्यान देने की है, कवि ने बड़ी गीयता से ऐसे गीतों में भाव की एक सुंदरता की भी रक्षा की है। वैसे उस गीत की सहजता के भीतर अर्थ की कमी नहीं है, संकेत प्रचुर हैं, सब कुछ ऊपर से कहा जा रहा है। सखी का निर्जन में होना, बिजली के भयकारी स्थिति जिसे उन्होंने बिजली का तुलित होना कहा है, तथा रात की अंधियारी गोपी की प्रेमोच्छ्वास के संकेत हैं, आवर्जन के नहीं। ऐसे गीतों में इतनी सहजता क्यों है? आधुनिक कवियों के कविताओं में, खास तौर से गीतों में, लोकगीतों की धुन शब्दावली और सहजता को ग्रहण करने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। ऐसे गीतों की प्रशंसा भी इधर खूब हुई है और छायावादी गीतकार भी प्रयोगवादी बनने के लोभ से इसी आसान ट्रिक को अपनाने लगे हैं। पर इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी यह दिखाई पड़ती है कि इन गीतों में भाव की सहजता नहीं आती, केवल लोक धुन पकड़ लेने से मध्यवर्गीय जीवन के कुंठाग्रस्त भावों में सहजता लाना असंभव है। इसके लिए भावों की ईमानदारी और अनुभूतियों की एकाग्रता अपेक्षित है। विद्यापति के गीतों में लोकगीतों की केवल धुन ही नहीं, उनकी सहजता और गंभीरतम अनुभूतियों की वंदना हुई है, इसी कारण ये गीत बहुत अधिक संवेद्य हो पाए हैं। विद्यापति जैसे दरबारी कवि के लिए लोकगीतों की ओर आकृष्ट होना ही बड़ी बात थी। उन्होंने इस आकर्षण को फैशन के लिए ग्रहण नहीं किया, जैसा कि आजकल बहुत से कवि किया करते हैं। इतना ही नहीं, विद्यापति के कई गीत इतने अधिक लोक तत्वग्राही हैं कि यह बिल्कुल लोकगीत मालूम पड़ते हैं। जैसे मुर रे अंगनवा चवन केरी गछिया, ताही चढ़ कुर रे काग रे, सोने चोच बदि देव तोय वायस, जयो पिया आवत आज रे, गावह सखी सब झूमर लोरी मदन अराधन जाऊ रे, चौदिसी चंपा मौली फूलल चान इजुरिया रात रे, कैस कय मोय मयन अराधव हुई बड़ी रति सात रे, विद्यापति कवि गायब तोहर पहु अच गुनक निधान रे, राओ भागीसर सब गुण आगर पदमा दे रमान रे। पोषित पत्रिका का काक शकुन संभाषण हमारे लोकगीतों का एक बहुप्रचलित विधान है। अपभ्रंश की लोक संगीत संपृक्त रचनाओं में भी वायस उड्डावंतीय में नायिका का यह प्रेम विवल भाव दिखाई पड़ता है। एक दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी जाती हैं, इसमें भी लोकगीतों की अनलंकृत सुंदरता और भावों की सहजता दिखाई पड़ती है। सुतली छलहों हन घरवा रे, गरवा मोतिहार, राति जखनी भिन सरवा रे, पिया आयल हमार, कर कौशल कर कपैत रे, हरवा उर टार, कर पंकज उर थपैत रे, मुख चंद निहार, केहन अभागिल बैरन रे, भागिल मोर निंद, भल कये नहीं देख पावल रे, गुणमय गोविंद। विरहणी गोपी का यह स्वप्न और उस स्वप्न में प्रिय के स्पर्श के कल्पित सुख का आसमय नींद टूट जाने के कारण तिरोधान तथा इससे उत्पन्न एक निविड़ वेदना का कितना सहज और स्वाभाविक चित्रण हुआ है। विरहणी अपने प्रिय के प्रत्येक स्पर्श का वर्णन कितनी ईमानदारी और निश्चल भाव के साथ करती है। विद्यापति के गीतों पर जयदेव का प्रभाव भी कम नहीं पड़ा। अभिनव जयदेव की उपाधि इसी विशेषता को दृष्टि में रखकर दी गई थी। जयदेव का प्रभाव न केवल प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं के चित्रण और आंगिक मिलन के विविध प्रसंगों में दिखाई पड़ता है, बल्कि गीतों की भाषा, शब्द चयन तथा धुन और लय भी स्पष्ट उभरता दिखाई पड़ता है। जयदेव के गीतों का प्रभाव दुर्निवार था भी। पिछले खेमे के बहुत से कवियों ने इस शैली का अनुसरण किया। विद्यापति और जयदेव के गीतों में प्रायः सदृश शब्दों या पदावलियों का व्यवहार हुआ है। हम पीछे स्थान स्थान पर इस ओर संकेत कर चुके हैं। विद्यापति संभवतः अपने काल के इस तरह के अद्वितीय कवि थे। उन्होंने गीत को अपनी स्वाभाविक प्रकृति को पहचान कर एक अभिनव पूर्णता और उत्कर्षता प्रदान की। सूर और मीरा भी संगीतात्मकता को अपने गीतों में संजोते हैं, पर विद्यापति की सहजता इनमें नहीं है। कारण विद्यापति की अद्भुत लोक जीवन संपृक्तता है जो उन्हें अपने युग के अन्य गीतकारों से अलग करती है। विद्यापति अच्छे संगीतज्ञ प्रतीत होते हैं, पर उन पर ग्वालियर घराने के प्राचीन संगीत का प्रभाव नहीं है जैसा सूर और मीरा दोनों पर जाने अनजाने पड़ा है। इसी कारण विद्यापति में लय और तर्ज की मौलिकता तो है ही, एक अछूती भाव संवेदना को व्यक्त करने में समर्थ ग्राम्यता या नैसर्गिकता भी दिखाई पड़ती है। इसी कारण विद्यापति के गीत एक व्यापक जन समाज के गले के कंठहार बन सके। इन गीतों में इतनी आत्मीयता और निकटता भरी है कि अपढ़ गंवार व्यक्ति भी इनका पूरा प्रभाव ग्रहण कर लेता है। यह एक अद्भुत कौशल है, क्योंकि विद्यापति जैसा बहुपठ और शास्त्रीय ढंग के अनेक ग्रंथों के रचयिता भरत प्रयत्न से ही लोक जीवन की अभिव्यक्ति सहजता को कायम रख सकता है।